तीर्थंकर धर्म के स्थापक नहीं होते, तीर्थंकर धर्म के पालक व उपदेशक होते हैं। धर्म तो अनादि है, आगे भी जैसा उसका स्वरूप है वह वैसा ही रहेगा। जीवों का जो असली स्वभाव है वह उनका धर्म होता है, और उसी धर्म को प्राप्त कराने वाला जैन धर्म है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जैन धर्म ही सब जीवों का निजी धर्म है, स्वयं का धर्म है, आत्मा का धर्म है, वह खुद का धर्म है। अतः जीव को सच्चा धर्म का स्वरूप समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। उसको समझना अपनी आत्मा को ही समझना है, उसको नहीं समझना अपने से दूर रहना है। इसलिए जैन धर्म का दूसरा नाम आत्मधर्म, जीव धर्म, अपने विकारी भावों पर, अयोग्य प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुषार्थपूर्ण धर्म। इस धर्म को तीर्थंकरों ने स्थापित नहीं किया बल्कि उसको अपने जीवन में सबसे पहले धारण किया, पालन किया। जिसका धारण व पालन किया उसी का उपदेश दिया। जिसका उपदेश हम आज सुन रहे हैं वह कोई तीर्थंकरों के द्वारा स्थापित धर्म नहीं है। प्रैक्टिकली जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को समझकर अपने आत्मा को पवित्र एवं पावन बनाया उनका जो वह साधना थी, उनकी जो वह साधना थी उस साधना का नाम ही है जीव धर्म, आत्म धर्म, जैन धर्म, पाप मुक्त धर्म, निर्मल धर्म, सच्चा धर्म, सत्य धर्म, संयम धर्म, अहिंसा धर्म। इसके जितने नाम दे दें कम है। इसको क्षमा धर्म कहो, मार्दव धर्म कहो, आर्जव धर्म कहो, शौच सत्य कुछ भी कहो, ब्रह्मचर्य धर्म कहो, सब एकार्थक है। ब्रह्मचर्य भी क्या है? ब्रह्म ने आत्मा, आत्म साधना करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न न होने देना उसको वीतराग अवस्था में ही यथावत बनाए रखना, यही असली ब्रह्मचर्य है। इसको सबसे पहले तीर्थंकरों ने जीवन में धारण किया, उसकी साधना की, उसका अनुभव लिया, फिर अनुभूति के पश्चात उन्होंने संसारी प्राणियों को उपदेश दिया। वह उपदेश ही आज हमारा कल्याण कर रहा है, उसको हम जिनवाणी बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी, उपदेश। धर्म को तीर्थंकरों ने साधकों की अपेक्षा से दो भागों में विभाजित करके उपदेश दिया, दो पार्ट बनाए। वैसे धर्म साधना की अपेक्षा से उसका एक ही भाग है, दो भाग नहीं है। पर जो साधना करने में कमजोर है उनके लिए दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है श्रमण धर्म, दूसरा पार्ट ना चाहते हुए भी बनाना पड़ा, जिसका नाम श्रावक धर्म। मुनि नहीं बन सकता इसलिए कुछ न कुछ करना चाहता है तो कर लो, तो श्रावक धर्म की उत्पत्ति हो गई। धर्म तो हम श्रमण धर्म को ही धर्म कहेंगे, उसमें संपूर्ण पंच पापों का त्याग हो जाता है, उसमें परिग्रह के प्रति कोई भी रागादि भाव बच नहीं पाते, और साधना रूप धर्म जो प्रारंभिक दशा में होती है, साधना रूप धर्म प्रारंभिक दशा में जो है वह त्याग रूप है, फिर अनुभूति रूप है। त्याग के बिना अनुभूति जीवन में नहीं आ सकती। त्याग यह पुरुषार्थ है, हम जितना अपनी शक्ति से पंच पापों का त्याग करते जा रहे हैं उतने प्रमाण में उस त्याग की अनुभूति को पाते हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं। इस मार्ग को चलते 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 मंजिल आती है, मंजिल आते ही त्याग और पुरुषार्थ दोनों अनावश्यक हो जाते हैं सिद्ध बनने के बाद। सिद्ध भगवान बनने के बाद भी क्या हम पुरुषार्थ करते रहेंगे धर्म के प्रति? नहीं, धर्म उपलब्ध हो गया, धर्म प्राप्त हो गया, अब कुछ भी करने धरने का नहीं, और अब तो बस बैठ करके अनुभूति करने का, कहीं आना भी नहीं, कहीं जाना भी नहीं, कहीं उठना बैठना वो करो ये करो विकल्प कुछ भी नहीं। आठ कर्मों को नष्ट ही किया, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना यही करना, वो भी करने की बात है। कुछ भी नहीं करना, करने की बात ही समाप्त हो जाती है, आवागमन समाप्त होता है, क्योंकि शरीर नहीं है। शरीर से मुक्त होने की बात और कर्मों से मुक्त होने के उपरांत आवागमन समाप्त हो जाता है। क्या रहेगा? आवागमन नहीं रहेगा। आवागमन यदि नहीं है तो क्या करना? आने जाने का विकल्प था, आते थे जाते थे, जब तक मार्ग था आना जाना चलता था। अरहंत बनने के बाद भी आवागमन रहा, इधर के उधर विहार किए, वहां समोशरण लगा, वहां उपदेश हुआ, वहां भव जीवों का कल्याण हुआ, कुछ दिन यहाँ रहे, फिर विहार हो गया। अरहंत दशा में भी आने जाने का आवागमन रूप प्रवृत्ति रहा। सिद्ध बनने के बाद गमन है, आगमन नहीं। सिद्ध तो यही बनते हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध पदवी की प्राप्ति जहां तपस्या वो करके आठों कर्मों को नष्ट कर देते हैं, उसी क्षेत्र में वो सिद्ध बनते हैं। सिद्ध बनने के बाद जाना पड़ेगा कि नहीं? कहां जाना पड़ेगा? लोक के अग्रभाग पर। सिद्धालय मत कहो, सिद्ध शिला मत कहो, सिद्धालय कह सकते हैं। लोक का अग्रभाग को सिद्धालय माना है। वहां एक बार गए, जाना तो पड़ेगा, नियम से जाना पड़ेगा। हम सिद्ध बन गए, यहां से नहीं जाएंगे, पावापुरी के सरोवर में ही हम रहेंगे। महावीर भगवान ऐसे नहीं कहते, मेरे पास अनंत शक्ति उत्पन्न हो गई है आठों कर्मों के नाश होने से, लेकिन मैं यहां पर रहना चाहूं, मेरी अनंत शक्ति भी काम नहीं करेगी। एक सेकंड के लिए भी यहां नहीं रह सकते। जिस क्षण आठ कर्म अलग हो गए, शरीर अलग हो गया, बस दो ही बचे थे, शरीर और कर्म, मोहनी कर्म, रागादि भाव, विकल्प भाव, अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव, वो तो बहुत पहले छूट गए थे। मुनि दशा में ही उनको सब उन्होंने पुरुषार्थ के माध्यम से नष्ट किया था। अब रहा क्या? शरीर और कर्म, अगाती कर्म चार बचे हैं और शरीर बचा है। इन दोनों के नष्ट होने पर आत्मा अपनी अनंत शक्ति को लगाकर, अनंत बल को लगाकर, शक्ति तो है ही, केवल ज्ञान के बाद अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यानी शक्ति, शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन एक मिनट केवल, एक सेकंड, पावापुरी के भक्तों के बीच एक सेकंड दर्शन करने के लिए, हे भगवान, एक ही सेकंड रुको, सभी लोग आ रहे हैं, सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं, आपका अंतिम दर्शन, एक सेकंड रुको। भगवान कहते हैं, मैं अपनी अनंत शक्ति को लगा भी लूं, रुक नहीं सकूंगा। कारण शरीर नहीं और आयु कर्म नहीं। आयु कर्म आत्मा को संसार में रोक लेता है और आयु कर्म का उदय है तो शरीर तो रहता ही है, उस शरीर मानव शरीर में रहेगा ही, मनुष्य आयु के उदय में मनुष्य शरीर में रहेगा। अब वो वो एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? आयु कर्म न होने से और शरीर का न होने से एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकते। इससे सिद्ध होता है आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है। द्रव्य संग्रह में कहा है अप्पा ऊर्ध्व स्वभाव, आत्मा ऊर्ध्व स्वभावी है। कब? जब वह स्वतंत्र हो जाए, कर्मों से शरीर से मुक्त होकर के स्वतंत्र बन जाए, उस समय ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है और वह स्वभाव को प्राप्त हो गया। इसी को कहते हैं वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अपना निजी स्वभाव कैसा है? तो शरीर से रहित, कर्मों से रहित, अज्ञान से रहित, मिथ्यात्व से रहित, कषायों से रहित, विकल्पों से रहित, सिर्फ केवल ज्ञान से सहित। ज्ञान बचे कषाय न बचे, ज्ञान बचे विकल्प न बचे, ज्ञान बचे विचार न बचे, विचार अलग है ज्ञान अलग है। विचार जब तक हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं तब विचार करते हैं और फिर कुछ करते हैं। जब तक व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं होता तब तक विचारक होता है। केवल ज्ञान के पश्चात व्यक्ति को विचारक रहना जरूरी नहीं। विचारक रहना तो एक छोटी मोटी बात है। व्यक्ति विचार करता है, भगवान विचार नहीं करते। भगवान केवल वस्तुओं को जानते हैं और देखते हैं। जानना और देखना, जानना और देखना दो ही काम है उनके। मैं जानूं इस प्रकार विचार नहीं करते। उनका ज्ञान डायरेक्ट वस्तु को जानता है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, डायरेक्ट जानता है। विचार करूं ऐसा विचार करके सोच करके जानते हैं, जानने में प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं। इसलिए उनके ज्ञान को दर्पण की उपमा दी है। दर्पण स्वच्छ धर्म, दर्पण के भीतर सामने के पदार्थ झलक रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इतना ही है ना कि इससे ज्यादा कुछ है? प्रतिबिंबित हो रहे हैं। दर्पण ये नहीं कहता कि मैं पदार्थों को देखूं, मैं पदार्थों को प्रतिबिंबित करा दूं, मैं पदार्थों को जानूं, उनको झलकाऊं अपने में, ऐसा दर्पण विचार नहीं करता। परंतु पदार्थ ही दर्पण में प्रतिबिंबित स्वतः होते हैं और दर्पण भी प्रतिबिंबित हुए पदार्थों को स्वतः दिखाता है। सही है ना? स्वतः वह दिखाता है और वो स्वतः प्रतिबिंबित तो उसमें हो जाते हैं। जहां रहते हैं वहीं रहते हैं पदार्थ, लेकिन सामने होने से उनका प्रतिबिंब इसमें आता है, पदार्थ नहीं आते। क्या पदार्थ आते? ऐसा हो तो मुश्किल हो जाएगा। कहां कहां जाके बैठेंगे फिर? दर्पण तो छोटा है, दुनिया तो बहुत बड़ी है और बहुत दूरी तक का पदार्थ इसमें झलक रहा है। पदार्थ ही आ जाए तो दर्पण में कहां समा जाएगा? उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पदार्थ नहीं आते, पदार्थ केवल प्रतिबिंबित होते हैं। ज्ञान भी उसमें नहीं जाता। दर्पण भी पदार्थ के सामने नहीं जाता और पदार्थ भी दर्पण में नहीं आता। दर्पण में पदार्थ का प्रतिबिंब मात्र होता है। सामने दर्पण पकड़ा है, मुख देख रहे हैं, हमारा मुख उसमें गया है या दर्पण हमारे में आया है? क्या हम दोनों दोनों अलग हैं? हम दोनों अलग हैं। दर्पण के स्थान पर दर्पण है, मुख के स्थान पर मुख है, किंतु उस दर्पण में मुख का प्रतिबिंब है और आंखों में दर्पण प्रतिबिंबित है। दर्पण हम में दिख रहा है क्या? नहीं, हम में, आत्मा में, ज्ञान में झलक रहा है क्या? नहीं, दर्पण आत्मा में झलक रहा है और आत्मा दर्पण में झलक रहा है। एक दूसरे को ये दोनों प्रतिबिंबित करा रहे हैं। कोई घुसे नहीं आपस में, वो जहां है वहीं है, परस्पर में प्रवेश नहीं हुआ है, परस्पर में प्रतिबिंबित होना चल रहा है। ऐसा केवली भगवान का ज्ञान है। कैसा ज्ञान? प्रतिबिंबित करवाने की शक्ति और दूसरे में प्रतिबिंबित होने की शक्ति, ऐसा है केवली भगवान। उदाहरण के लिए एक सिद्ध भगवान है, उनके आजू बाजू में कितने सिद्ध भगवान हैं? सिद्धालय में अनंत हैं। वो जहां बैठे हैं उनके भीतर कितने सिद्ध भगवान हैं? वो भी अनंत है। लेकिन एक में होकर के सभी एक हो गए हैं क्या? भिन्न भिन्न हैं। ये वैसे ही भिन्न भिन्न हैं जैसे एक लाइट ये जलाया, दूसरा जलाया, तीसरा जलाया, चौथा जलाया, हजार जलाया, प्रकाश सबका मिल गया, समाहित हो गया, एक प्रकाश में दूसरा प्रकाश, एक प्रकाश में दूसरा प्रकाश, समाहित होता चला गया। अब एक लाइट बुझाई, कुछ अंतर आया कि नहीं? क्या आया? हाँ, उसका प्रकाश जो समाहित हो चुका था उसने अपने प्रकाश को समेट लिया, कम हो गया। दूसरा बुझाया और कम हो गया, तीसरा बुझाया और कम हो गया, सब वापस आने लगा। प्रकाश समाहित होकर के रह सकता है अलग अलग लाइटों का, किंतु उन प्रकाशों का अस्तित्व भी भिन्न है क्या? नहीं, अलग अलग स्वतंत्र है क्या? नहीं, प्रत्येक लाइट का प्रकाश स्वतंत्र रूप से है, मिल करके रहने के बावजूद भी स्वतंत्र है। ऐसे सिद्ध भगवान एक सिद्ध भगवान के अंदर अनंत सिद्ध परमेष्ठी रह सकते हैं, इतनी जगह होती है वहां। और अपन बैठते हैं तो बैठ नहीं सकते, जरा उधर खिसको इधर खिसको, हमको जगह कम पड़ रही है तुमको ज्यादा है, हम बैठ नहीं सकते। सिद्ध भगवान अनंत बैठते हैं, देखो तो कितनी दया। सिद्ध भगवान ये नहीं कहते तुम बाद में आ गए, बहुत भीड़ हो रही जरा उधर जाओ, उधर जाके बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं। कितने भी आ जाएं, उसमें समाहित होने की शक्ति है। कंप्यूटर में अक्षर आते हैं, स्विच दबाते ही आपका नाम आ गया, उसको छपाते जाओ जब तक खत्म ना हो उसमें से। एक ही बार टाइप किया ना, नाम एक ही बार आया है, प्रिंट आउट निकालना है, कितने प्रति चाहिए, कितने प्रति निकाल सकते, लाख बस, इसके बाद खत्म हो जाएगा, करोड़, असंख्यात, अनंत, कितने निकाल सकते। अब उसमें आ कहां से रहा है, जो एक बार टाइप कर दिया वो कहां से आ रहा है, हर उसमें प्रिंट आउट निकल रहा है, हर बार ऑर्डर दे रहे हैं, हर बार आ रहा है जा रहा है, प्रिंट आउट निकल रहा है, खत्म नहीं हो रहे हैं नाम, कितने नाम है उसमें, है तो एक ही, दस तो नहीं है उसमें। सभी फाइल खोल के देख लो, एक ही नाम है आपका। महाराज जी आपको कैसे मालूम, हमने एक बार देखा था उसमें कैसा कैसा क्या क्या है, हमने सोचा ये सिद्ध भगवान के समान है, एक नाम है और करोड़ प्रति निकाल रहे हैं तो भी खत्म नहीं होता वो, एक प्रिंट आउट टाइप करके एक प्रिंट आउट निकाल लिया तो दोबारा टाइप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही नाम में से अनेक नाम आते जा रहे हैं, आते ही जाते हैं। एक हार्ड डिस्क में कितनी शक्ति है, अनंत अनंत फाइल उसमें रख सकते हैं। आजकल तो कुछ सीमित रख रहे हैं, लेकिन उसमें समाहित होने की शक्ति बहुत है। पुद्गल में पुद्गल समाहित होता जाता है, हजार ग्रंथों को टाइप कर लिया कंप्यूटर के भीतर और इतने से हार्ड डिस्क में हम स्टॉक करके रख सकते हैं, और वो चित्र चाहे जितना बड़ा बना लो, अक्षरों को चाहे जितना बड़ा बना लो छोटा बना लो, आते जाते हैं। बड़ा चित्र को छोटा भी किया जा सकता है और छोटा चित्र को बड़ा भी किया जा सकता है, वो ऐसा 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 छोटा हो करके इतना ही तो करके रखते हैं, समाहित होते जाते हैं। और आते समय बड़ा होकर के आता है, सूर्य किरण की तरह, किरण ऊपर बहुत छोटी होती है, जमीन पर आते आते उसका विस्तार बढ़ जाता है। ऐसे सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध भगवान की एक सिद्ध भगवान के अंदर अनंत सिद्ध भगवान हैं, उनमें से एक एक सिद्ध भगवान को अलग निकाल लो, अलग भी हो सकते हैं, उनमें अनंत और मिलाते जाओ, मिल भी सकते हैं। क्योंकि आत्मा अमूर्त है, आत्मा अमूर्त है, मूर्त नहीं। मूर्त तो पुद्गल है, ये इसको मूर्त बोलते हैं, जो दिखाई देता है, जिसका स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये चार लक्षण होते हैं जिसके पास, उसको मूर्त बोलते हैं। मूर्त मुहूर्त नहीं, मूर्त अलग है, मुहूर्त अलग है, ये मूर्त पदार्थ है। और सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्त है, और हम लोगों की आत्मा शरीरधारी होने के कारण से पकड़ में आया है, इसलिए मूर्त भी है। और उसके स्वभाव की दृष्टिकोण से देखे तो अमूर्त है, हमारी आत्मा स्वभाव से अमूर्त है, लेकिन शरीर के संपर्क के निमित्त से क्या बन गया है, मूर्त बन गया है, मूर्त है ये। सिद्ध भगवान की बात बता रहे थे, एक सिद्ध भगवान में अनंत सिद्ध भगवान रह सकते हैं, और एक सिद्ध भगवान स्वतंत्र भी रह सकते हैं, किंतु अनंत मिल करके रहने के बाद भी उन सब का अस्तित्व स्वतंत्र 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 ही रहता है। जैसे लाइट का प्रकाश, रूम में प्रकाश, इस लाइट का प्रकाश स्वतंत्र है, दूसरे का भी स्वतंत्र है। और स्वतंत्रता तब पता चलती है जब एक को बुझा दो तो उसमें कमी आती है, उतना ही नहीं रहता, कम हो जाता है, दूसरा बुझा दो और कम होता है, वो भी स्वतंत्र है, तीसरा बुझा दो वो भी कम हो जाता है, वो भी स्वतंत्र है, मिलता भी स्वतंत्रता से और समेटता भी स्वतंत्रता से। इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। उन्होंने केवल ज्ञान में जो देखा वो और कुछ नहीं था, वो एक प्रकृति थी, वो एक सृष्टि थी, वो एक प्रकृति थी, वो एक सृष्टि थी, सृष्टि की सृष्टि में से ही एक पदार्थ था, एक वस्तु थी, उसको उन्होंने जाना देखा, पर अनंत वस्तुओं को भी जाना और देखा, निज अपनी वस्तु को भी, अपनी आत्मा को भी केवल ज्ञान से जाना और देखा, अपनी आत्मा भी सृष्टि का अंश तो है, एक टुकड़ा है, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, इसका विनाश संभव नहीं, इसका जैसा स्वरूप है वैसा ही रहेगा। मरता कौन है, शरीर भी कहां मरता है, वियोग होता है, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, शरीर अभी कहां जीवित है, अभी भी मरा हुआ है। और जब हम इसको छोड़ देते हैं शरीर को, तब भी कहां जीवित है, अगर जीवित होता तो जानता, देखता, जीवन किसके पास होता है, जीव के पास या शरीर के पास? जीवति जीविष्यति, जीवित पूर्वो वा इति जीवः। जीता है, जीगा, पूर्व में अनंत काल से जी चुका है, उसका नाम जीव है। ये जीव की परिभाषा है, जीव का लक्षण है। जीव शब्द यह क्यों आया? जीता है इसलिए जीव है, जीता था इसलिए इसको जीव कहते हैं, जिएगा इसलिए इसको जीव कहते हैं। जीने की शक्ति का अभाव कभी इसका होता नहीं है। इस वस्तु को जीव नहीं कहा, क्योंकि इसमें जीवन नहीं है, जीवन नहीं है। है जीवन लेकिन जीव नहीं कहा, क्योंकि इसमें ज्ञान की शक्ति नहीं, जानने और देखने की शक्ति इसमें नहीं है, इसलिए जीव नहीं कहा। जीव पहले भी जीता था, अब भी जी रहा है, भविष्य में भी जिएगा, जानते देखते हुए जिएगा, जीता था, जिएगा, जी रहा है। ये जीव की शक्ति है, इसी को जीवन कहा। जानने और देखने के साथ साथ जो जी रहा है उसका नाम जीव। और उसको प्राण भी कहा। किसको? जानने और देखने को, देखने की जो शक्ति है जीव के पास, वह प्राण है। प्राण है वो। अब उस प्राण में दो भेद किया, शुद्ध प्राण और अशुद्ध प्राण। शुद्ध प्राण केवल ज्ञान, अशुद्ध प्राण हम लोगों का प्राण, अशुद्ध ज्ञान। अपना वर्तमान का ज्ञान, हम लोगों का ज्ञान अशुद्ध है, क्योंकि कर्म का आच्छादन इसके ऊपर है, इसलिए अशुद्ध है। ज्ञानावरणी कर्म के आच्छादन से ये थोड़ा सा प्रकट है और बाकी सब ढका हुआ है। जैसे बादल, जितना बादल सूर्य के ऊपर आया है उतना प्रकाश नहीं है, और जितना नहीं आया है उतना प्रकाश है, ऐसा हम लोगों का ज्ञान है। अधूरा ज्ञान है। और केवली भगवान का ज्ञान बादल से रहित, निर्मल आकाश में रहने वाले सूर्य की भांति बादल रहित आकाश, ऐसा ज्ञान केवली भगवान का है। यही अंतर है। अब ज्ञान हमारे पास भी है और उनके पास भी है, किंतु एक अशुद्ध है और एक शुद्ध है। इसी ज्ञान को प्राण भी कहा है। हम अशुद्ध प्राण वाले हैं और केवली भगवान शुद्ध प्राण वाले हैं। जो प्राणों को धारण करके जीता था, जीता है, जीता रहेगा, उसका नाम जीव। ये जीव की परिभाषा है। प्राण है इसके पास, चाहे अशुद्ध प्राण हो चाहे शुद्ध प्राण हो, प्राण रहेंगे, हमेशा रहेंगे। आप निगोद में भी जाएंगे तो प्राण रहेंगे, एक इंद्री बनेंगे तो भी प्राण आपके पास। कौन से प्राण? शुद्ध के अशुद्ध, अशुद्ध प्राण रहेंगे। अरहंत भगवान बनेंगे तो शुद्ध प्राण रहेंगे, ज्ञान की अपेक्षा से शुद्ध प्राण। सिद्ध भगवान बनेंगे तो शुद्ध प्राण। मुनि महाराज बनेंगे तो अशुद्ध प्राण। केवल ज्ञान नहीं है ना, जो मुनि है केवली नहीं है, अशुद्ध प्राण वाले। ज्ञान एक हो दो न हो, दो ज्ञान गड़बड़ है। जहां दो है वहां अशुद्ध है, एक में अशुद्धि नहीं होती। पानी है, अकेला पानी है तो शुद्ध है, अगर उसमें दो हो गए पानी अशुद्ध हो गया। दो क्या, कोई मिट्टी, कोई कलर मिक्स कर दिया, दो हो गए, दो होने से अशुद्ध। शुद्ध उसी को बोलते हैं जो वस्तु स्वतंत्र हो, अकेला हो, उसी को शुद्ध कहते हैं। अशुद्ध में दो या दो से अधिक होते हैं। जब तक व्यक्ति विवाहित ना हो शुद्ध है, इसलिए व्यवहार में भी कहते हैं क्या वो मंगल, मंगल में लिया है कन्या मंगल, क्या बोलते हैं ना व्यवहार में आता है जो नहीं, कुछ मंगल शब्द दिया है उसको, मंगल ही कहा है, मंगल कार्य में, मंगल कार्यों में। तो जब तक दो नहीं होते अशुद्ध नहीं होते, स्वतंत्र रहते शुद्ध रहते। दो होने के बाद फिर कहते हैं ना व्यवहार में वो तो संसार में फंस गए, इसका मतलब क्या, संसार दो से बनता है, संसार यानी अशुद्ध और स्वतंत्र यानी शुद्ध। वो तो संसार में फंस, संसार का मतलब ये है कि उनकी उनका विवाह हो गया अशुद्धि, जहां अशुद्धि होती है वहां सूतक होता है, और जहां जीवन स्वतंत्र होता है वहां सूतक का कोई सवाल ही नहीं। मुनि के जीवन में कभी सूतक आता है नहीं, क्यों नहीं आता, अकेले हो गए। आरिका को सूतक लगता है, सूत है लेकिन फिर भी सूतक नहीं। सूत तो है, साड़ी है, सब है, लेकिन सूतक क्यों नहीं, अकेले हो गए। आरी का अकेली, मुनि अकेले, जब तक विवाह नहीं था तब तक अकेला शुद्ध है, उसको मंगल माना है, व्यवहार मंगल, परमार्थ मंगल मत समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आरिका भी मंगल, फिर कन्या भी मंगल, सब पूज्य हैं, जो मंगल होते हैं वो उत्तम भी होते हैं और फिर शरणीभूत भी हैं, तो किस किस को शरण जाओगे। संसार में जिसको मंगल कहा है वहां दूसरा अभिप्राय है, परमार्थ क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में जिसको मंगल कहा है वो बात अलग है। यहां पूज्यता की दृष्टिकोण से नमस्कार करने के दृष्टिकोण से मंगल कहा है। कितने नमस्कार के योग्य हैं? तो कहते हैं पांच। तो मंगल पांच ही हैं क्या? पांच ही हैं, पांच से ज्यादा है ही नहीं। पंच परमिष्टि पांच मंगल, चार मंगल इसलिए हो गए कि उसमें आचार्य उपाध्याय और साधु को साधु मंगल में समावेश किया है, इसलिए चार बन गए। वो केवली प्रणीत धर्म अहिंसा धर्म हो तो मंगल है ही। अहिंसा वही होती है जहां स्वतंत्रता हो, एक हो, दो में तो अहिंसा नहीं बनती, हिंसा है। अहिंसा की साधना करते 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 चौदहवें गुण स्थान तक जाना पड़ता है। चौदहवें गुण स्थान में भी दो का संबंध है, शरीर आत्मा, शरीर कर्म, तीन हो गए। वहां तक संसार है। संसार क्या है ऐसा पूछे तो संसार संयोग दशा का नाम है। दो से अधिक या दो का, दो द्रव्यों का संबंध संसार है। देखो, दो द्रव्यों का संबंध संसार है, और संसार कहां तक है? चौदहवें गुण स्थान तक। तो अरहंत भगवान संसारी हैं या मुक्त, उनको भी संसारी कहा। और एक संसार ये भी है, वो संसार में फंस गया कहते हैं। तो अभी तक क्या सिद्ध भगवान था क्या? ये लोक व्यवहार है। सिद्ध भगवान नहीं था, था संसारी, लेकिन एक संसार और बढ़ा लिया। शरीर था, आत्मा था, जीवन स्वतंत्र था, सब था, मंगल था, किंतु एक संसार और बढ़ा लिया, ऐसा कहते हैं। बाद में एक और बढ़ गया, फिर संसारी बन गया, जरा पांव और दस गया, एक और बढ़ गया, चार हो गए, एक और बढ़ गया, पांच हो गए, बढ़ते ही जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान को 102 हो गए, बढ़ते बढ़ते पांव बहुत गहरे चले गए, धसते धसते आपके 3 फुट ही धस रहे हैं पांव। आदिनाथ भगवान 100 फुट, 200 फुट, चक्रवर्ती के 96,000 फुट पांव धस गए। सबसे ज्यादा संसारी कौन है? तीर्थंकर इतने संसारी नहीं हो सकते। ये बात अलग है कि तीर्थंकर चक्रवर्ती भी पद भी पा ले तो वो भी उतने ही संसारी। चक्रवर्ती सबसे ज्यादा संसारी, उनके जैसा फंसने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं। लेकिन ऐसे पुरुष फंसते भी हैं और निकलते भी, और अपन लोग तीन ही फुट फंसते हैं लेकिन निकलते नहीं। हमारे पास कोई विशेषता नहीं, उनके पास कोई जरूर विशेषता है। वो फंसते भी हैं तो इतने जल्दी निकलते भी हैं। भरत चक्रवर्ती देखो, बाहुबली के पश्चात उन्होंने मुनि दीक्षा ली। बाहुबली ने पहला ली, बाहुबली के बाद उन्होंने दीक्षा ली। लेकिन विशेषता तो देखो, बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, केवल ज्ञान नहीं हो पाया, भगवान नहीं बने। भरत दीक्षा लेकर सामायिक में बैठ गए और 48 मिनट के भीतर भीतर उनको केवल ज्ञान हो गया। कितने फंसे हुए थे? 96,000 फुट और उस कीचड़ से पांव निकाल कर एकदम से आए और सामायिक में बैठ गए। कितने तेजी से निकल आए बाहर, ये कहलाता है संस्कार। घर में रहकर चक्रवर्ती सदा वैरागी थे। वो जानते थे कि मेरे पांव 96,000 फुट धसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस कीचड़ से अलिप्त हूं, ऐसा चिंतन करते थे। इस चिंतन मनन से उनकी आत्मा निर्मोही थी, जैसे जल में कमल, सरोवर में कमल भिन्न ही रहता है, डूबता नहीं। सरोवर का जल बढ़ जाए तो खुद नहीं डूबता, और ऊपर आता है और ऊपर आता है। डूब भी जाए सड़ेगा नहीं, जल्दी बाहर निकल आएगा। ये कमल की विशेषता। जल में रह करके भी जल से भिन्न, उसका जो डेट है वो पूरी धरती तक जाती है। सरोवर में 5 फुट 6 फुट जितना भी हो जल, वहां तक उसका कनेक्शन रहता है, धरती तक, मिट्टी तक। उसकी जड़ें मिट्टी में, किंतु उसका मुख ऊपर, जल के ऊपर है। हमारे पांव संसार में भले ही हों, किंतु हमारा ज्ञान संसार में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। ज्ञान से ही हम निर्मोही हो सकते हैं। ज्ञान को ही निर्मोही करना है। ज्ञान निर्मोही रह सकता है, ज्ञान को ही निर्मोही करना है। ज्ञान को निर्मोही रख करके पांव से आप संसारी हैं, तो पांव तो पांव हैं, पांव भिन्न हैं, ज्ञान भिन्न है। ज्ञान से अलिप्त रहने वाला व्यक्ति जल्दी संसार से छूट सकता है, जैसे भरत चक्रवर्ती उदाहरण। उनका ज्ञान अलिप्त था, भाव संसार उनका कम था, द्रव्य संसार की कोई सीमा नहीं थी, षटकंडाधिपति था। शरीर संसार बहुत विस्तृत था, शरीर संसार संसार का विस्तार बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन भाव संसार उनका ना के बराबर। जहां थे वहीं निर्मोही थे, और हर पल सोचते थे, सोचते थे पल पल, हर पल, हर पल, हर पल सोचते थे। क्या सोचते थे? मैं निर्मोही, हर पल मैं निर्मोही, हर पल 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 मैं निर्मोही। ये जो ऐसे सोचते थे, विचार करते थे हर क्षण, उसी का चमत्कार है कि केवल दीक्षा लेने के पश्चात 48 मिनट के भीतर उनको केवल ज्ञान हुआ। संस्कार को उन्होंने मजबूत किया था, ये विशेषता थी। संस्कार मजबूत थे, उसका फल निकला। अपने संस्कार नहीं है, हमारा द्रव्य संसार तो बहुत सीमित है, कुछ भी नहीं है उनके सामने। उनका 6 खंड, उनके 6 खंड, 5 मिलीच खंड उनके, 1 आर्य खंड पूरा उनका, और अपना क्या है उसमें से, और जो है उन्हीं का था, उन्हीं का लेकर के हम इतने फंसे हैं। उनका छोड़ा हुआ है ये, उनका छोड़ा हुआ खा रहे हैं, उनका त्यागा हुआ खा रहे हैं, और उसी में फूल फूल करके लट्टू बन रहे हैं कि हमारा इतना है। कितना ज्ञान है, जो है दूसरे का है, जो है दूसरा है, पर है, पर है, पर का था, वो जो पर का था वो उनका भी नहीं था, वो भी कह करके चले गए ये पर का है। पहले जो चक्रवर्ती हुए हैं, भरत चक्रवर्ती भी कह रहा है कि पहले जो चक्रवर्ती हैं, मेरे से पहले अनंत हुए हैं, ये उनका था, ये मेरा नहीं, ये उनका ही खा रहा हूं। उनको वैराग्य हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, किसका खा रहा हूं। एक और इस ऐसा विचार करते करते विरक्ति आ गई उनको, भरत चक्रवर्ती को। जब वो दिग्विजय के लिए जाता है, विजयार्थ गुफा में पहुंचता है, तो उस गुफा में देख लेता है चारों ओर नाम ही नाम लिखे हुए हैं। कहीं भी गुफा में जरा सी भी दीवार खाली नहीं है, पूर्व चक्रवर्तियों के नाम खुदे हुए हैं वहां। उसको देख करके वो ताज्जुब कर गया, मेरे से पहले भी क्या इतने चक्रवर्ती हो गए। वहां उनको नाम लिखने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मैं चक्रवर्ती बनकर के यहां आया और यहां पर आया था मैं प्रथम चक्रवर्ती, और मेरा नाम दीवार पर लिख करके चला जाऊं इस भावना से पहुंच गया है। लेकिन अंदर प्रवेश करते ही जहां पर नाम लिखना था दिख ही नहीं रहा है, जरा भी जगह दिख नहीं रही है। क्या करना पड़ा आखिर, एक का नाम मिटाना पड़ा, साफ करना पड़ा। साफ करके वहां पर लिखना पड़ा, जो जाता है वो लिख के आता है। अब भरत चक्रवर्ती ने ही दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिखा, तो फिर बाद वालों ने उनको कहां जगह मिलेगी, और आप पहुंच गए तो आपको भी कहां मिलेगा। छह खंड के अधिपति हूं इस बात को स्वर्णाक्षर में लिखने के लिए चक्रवर्ती वहां जाता है और लिख देता है। लिखने के पश्चात आता है दूसरा चक्रवर्ती, आता है तो ये पहले चक्रवर्ती का नाम है, इसको नहीं मिटाना, ये हमारे बुजुर्ग हैं, जो बहुत पास के होते हैं उनका नहीं मिटाते, जो बहुत दूर के होते हैं उनका मिटा देते हैं और उनके नीचे लिख देते हैं, उनके नीचे दूसरे बहुत दूर के होते हैं उनके नीचे लिख देते हैं, इस तरह से करते हैं। और वहां 11 कितने चक्रवर्ती होते हैं, 12 चक्रवर्तियों का नाम मिलता है इस तरह से। हमसे पहले वाला आया था उनके नीचे उन्होंने लिख दिया है, तो उनके नीचे हमारा, मैं उसके बाद का चक्रवर्ती था। क्या है ये नाम लिख दिया, क्या उनका हो गया नाम लिखने मात्र से, छह खंड उनके हो गए, नहीं है, ये पर ही थे, पर को ही हमने अपना मान लिया था, केवल मान्यता में अपना बना लिया था। ये मान्यता भेद है और कुछ नहीं, कि मेरा है मेरा है मेरा है, मान्यता ही है केवल, ये अपना है ही नहीं। चक्रवर्ती कहता है पहला चक्रवर्ती का भी ये नहीं था, नहीं रहा है, मेरा क्या रह सकता, मेरा क्या रह सकता है, मेरा भी नहीं, उनका भी नहीं, बाद में जो आने वाले हैं उनका भी ये हो नहीं सकता। ये मेरा है कहने वालों की जो लाइन लगती है वो केवल एक भ्रम है, वो झूठ है। और वह भ्रम में जो जीवन जीता है व्यक्ति, उसी का नाम संसार जीवन है। संसार जीवन का तात्पर्य भ्रम का जीवन, ये वस्तु मेरी है, मैं इसका हूं, ये भ्रम का जीवन, इसी को संसार जीवन कहा है। शरीर मेरा होता है कि नहीं, इसलिए तो दर्पण के सामने जाते हैं। शरीर अपना है, उनसे ज्यादा अच्छा सजाना है, ये भाव आते हैं कि नहीं, ये कौन सा जीवन, ये धर्म का जीवन क्या भ्रम का जीवन? ये भ्रम का जीवन जो हमें दिखता है वो वस्तु पर है क्या नहीं, पर को अपना मानना भ्रम का जीवन है क्या धर्म का जीवन है? भ्रम का जीवन है। इसी अध्यात्म बात को समझने के बाद मोह छूट सकता है, अन्यथा संसारी जीव का यह भ्रम समाप्त नहीं होता। सुन रहे हैं? जरा चिंतन भी किया करो, चिंतन कर करके जीवन जीना, जीवन जियो लेकिन चक्रवर्ती रहो। चक्रवर्ती के दिल में भ्रम नहीं था, पांव थे संसार में, आत्मा संसारी नहीं रहा। जिसके दिल में भ्रम मिटता है उसका बाहरी संसार मात्र बचता है, भीतरी संसार समाप्त होता है। ऐसा जीवन जीना ही सार्थक जीवन माना जाता है। इस जीवन को चक्रवर्ती भी जी गए, इतने बड़े संसारी, दिखता तो बहुत बड़ा संसार लेकिन उनके पास कुछ भी संसार नहीं था, ऐसे अलिप्त थे चक्रवर्ती। रत्नाकर कर्मी ने बहुत वर्णन किया है चक्रवर्ती के संबंध में, कैसे थे वो। वो वर्णन इसलिए किया होगा उन्होंने, उन्होंने भी तर्क लगाया, बाहुबली को 1 साल लगा और इनको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान क्यों हुआ। हाँ, एक पॉइंट को पकड़कर कवि इतना गहरा उतरता है विश्लेषण करने के लिए, एक ही पॉइंट को पकड़ करके, जैसे विद्याष्टक में 8 ही अक्षरों को पकड़ करके इतना गहरा उतरा जा सकता है, कवि होता है। कवि की छवि अलग ही हुआ करती है, जहां इसलिए कहा जाता है जहां पहुंचता नहीं रवि वहां पहुंचता है कवि। हिंदी में कहते हैं जहां रवि नहीं पहुंच सकता, रवि यानी सूर्य, सूर्य जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच जाता, यानी सूरज से बड़ा है वो। रवि कुछ धरती के कुछ हिस्से को प्रकाशित करता है लेकिन कवि सारे 3 लोक अलोक को भी प्रकाशित करता है। अलोक में सूर्य नहीं है लेकिन कवि के माध्यम से अलोक का वर्णन करो, ये कहते ही कवि शुरू कर देता है। जहां रवि नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच करके वर्णन प्रारंभ कर देता है। एक पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने, चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में ही केवल ज्ञान क्यों हुआ, उसका मतलब ये है कि चक्रवर्ती पूर्वापर बहुत आदर्श रहे हैं, अब उस आदर्श जीवन को व्याख्यायित करना पड़ेगा, कैसे होंगे, कितने संस्कार होंगे। बांध लिया कवि ने उसके आदर्श जीवन को, अपने शब्दों में बांध लिया। अब वो आदर्श जीवन तो आदर्श जीवन होता है, कवि किसी भी व्यक्ति के आदर्श जीवन को पकड़ के वर्णन कर रहा है तो वह थोड़ा सा उपा खारा लगा करके करता है, सीधा सीधा जितना है उतना ही नहीं कहता, नमक मिर्च लगा करके थोड़ा सा। हाँ, कोई भी विषय वो जिसको कहते हैं बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, और जैसा कहते हैं वैसा ही वस्तु रहे ये नियम नहीं है। आदर्शता थी इसमें कोई संदेह नहीं, आदर्श एक गुण है और वह आदर्श गुण चक्रवर्ती के पास होना ही चाहिए, ये पता चल गया ना, पता चल गया। उसको विश्लेषित करना, नमक मिर्च लगाना, वो कहेंगे चक्रवर्ती चक्रवर्ती सामायिक में जब नहीं बैठते थे तब भी वो सामायिक करने के समान ही उनकी प्रवृत्ति रहती थी, यानी सामायिक में जो चिंतन विचार आचार विचार आते हैं वो प्रवृत्ति के काल में भी उनके विचार ऐसे आते थे। अपन तो सामायिक में बैठने के बाद ही कहते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और उस परिवार अलग है, और परिग्रह अलग है, और मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो सामायिक में कहते हैं अपन। अन्य टाइम में क्या नहीं कहना चाहिए है? हर वक्त कहना चाहिए। अब भरत चक्रवर्ती नहीं भी कहता हो लेकिन कवि तो कहेंगे वो चलते फिरते हुए भी सामायिक करते थे, लगा दिया ना नमक मिर्च। कभी ऐसा होता है, कभी नमक मिर्च लगा लगा करके विश्लेषण करता है और उसके आदर्श जीवन को इतना आदर्श बना करके खड़ा कर देता है, पढ़ने वाला पाठक जब वो साहित्य पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते वह खुद भी आदर्शता में डूब जाता है और अपनी आत्मा को आदर्श बना डालता है। तो साहित्य लिखने वाले कवि को तब उसका फल की प्राप्ति होती है। साहित्य लिखने वाला कवि फल कब पाता है? साहित्य लिखा यही फल नहीं है, इस साहित्य के माध्यम से लोग आदर्श बनेंगे और लोग जितने आदर्श बनते जाएं उनकी क्वांटिटी जितनी बढ़ती जाए उतनी सफलता कवि को मिलती जाती है। ये कवि बनने का फल है, परिणाम है। किसी साहित्य को पढ़कर के कोई आदर्श बन जाए तो एक भी व्यक्ति आदर्श बन जाए तो कवि को सफलता मिल गई, उस साहित्य को पढ़कर के वैरागी बन गया, निर्मोही बन गया, आदर्श बन गया, गुणवान बन गया, धर्मात्मा बन गया, पूज्य बन गया, तो कवि की सफलता मिल गई। कविता लिखे क्यों जाते हैं, किस कारण से? फल पाने की, क्या फल की इच्छा है? अपना भी कल्याण हो और इसके माध्यम से यदि मेरा कल्याण हुआ तो दूसरे का हो सकता है तो हो, नहीं होता है तो नहीं होने दे, लेकिन उसमें सबसे पहले मेरी बारी है, इसके माध्यम से सबसे पहला मेरा कल्याण हुआ पर्याप्त है। लिखते समय अपनी एकाग्रता बढ़ गई, एकाग्रता बढ़ गई, समय धर्म ध्यान में निकल गया, आर्त रौद्र ध्यान से बच गया, एकाग्रता बढ़ गई। कितना टाइम हुआ? आज क्या नहीं है क्या पूजन? निर्मोह होना, स्वतंत्र होना, अपने जीवन को स्वतंत्र समझकर स्वतंत्र जीवन जीना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। लोगों को देख देख करके नहीं जीना, शास्त्र को देख देख करके जीना, गुरु को देख देख करके जीना, भगवान को देख देख करके जीना। हम कैसे जीते हैं? शास्त्र को देख देख करके जीते। लेकिन पहले पासून की जो बात थी उसमें किसको देख देख करके जीते थे? दूसरे को देख देख करके। ये अज्ञान का जीवन है। तीन को देख देख करके अपना जीवन बनाना, देव, शास्त्र, गुरु। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, तीन का लक्षण अच्छी तरह से समझना और जैसा उनका लक्षण है वैसा उस दर्पण को देखना, अपना जीवन बनाना। इससे परम कल्याण होगा। जिनवाणी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिनवाणी जयवंतो मां जग में जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।